घर, परिवार और बच्चे।
श्रोता, घर, परिवार और बच्चे कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं जहरा जैदी और सैयद नीसम का सलाम स्वीकार करें।
कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की थी कि बच्चों की परवरिश कब शुरू करें। इस संदर्भ में हमने उल्लेख किया था कि माँ के गर्भ में शिशु के जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में किए गए शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि माँ के गर्भ में ही शिशु की कुछ महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित हो जाती हैं।
Congratulations. Against all odds, you were conceived from a single cell to a fully grown baby in just 9 months. Amazing. You are a miracle.
Perhaps the most keenly developed of all the fetal senses is hearing. The fetus may be completely surrounded by amniotic fluid, but because sound travels through fluid about 4 times faster than it does in air, he has plenty to hear.
Does talking to an unborn baby or playing music while they are in utero affect the child's development? According to a study from the University of Helsinki in Finland that focused on 33 pregnant mothers along with their children after they were born, the children's brains reacted to the sounds that had been played for them while in utero.
आज जिस प्रकार अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा हम गर्भ में शिशु के दिल की धड़कनें सुनते हैं और उसकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसी तरह शिशु भी माँ के गर्भ में अपनी माँ और बाहरी दुनिया की आवाज़ें सुनता है। इसलिए ये आम धारणा कि मनुष्य जन्म लेने के बाद ही सुनता और समझता है और दुनिया में कदम रखने के बाद ही उसे सब कुछ सीखना है, सही नहीं है।
When does learning begin? Now, as you ponder that question, maybe you're thinking about the first day of preschool or kindergarten, the first time that kids are in a classroom with a teacher. Or maybe you've called to mind the toddler phase when children are learning how to walk and talk and use a fork. Maybe you've encountered the 0 to 3 movement, which asserts that the most important years for learning are the earliest ones. And so your answer to my question would be, learning begins at birth. Well, today I want to present to you an idea that may be surprising, that may even seem implausible, but which is supported by the latest evidence from psychology and biology. And that is that some of the most important learning we ever do happens before we're born, while we're still in the womb.
शिशु के मामलों की विशेषज्ञ एनी मर्फी पॉल इस सवाल के जवाब में कि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कहती हैं कि सामान्य तौर पर समझा जाता है कि बच्चा जब समझदार हो जाता है और स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये कि जब वो जन्म ले लेता है। लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है।
First of all, they learn the sound of their mother's voices. So fetuses are even learning about the particular language that's spoken in the world that they'll be born into. A study published last year found that from birth, from the moment of birth, babies cry in the accent of their mother's native language. Babies, French babies' cries end on a rising note, while German babies end on a falling note, imitating the melodic contours of those languages. But it's not just sounds that fetuses are learning about in utero, it's also tastes and smells. Babies seem to remember and prefer these tastes once they're out in the world.
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में ही सुनता और समझता है और उसमें सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है तो मनुष्य के पालन पोषण का सिलसिला माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाना चाहिए और माँ बाप को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिशु के जन्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में नए शोधों के आधार पर वैज्ञानिक एवं चिकित्सक इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य की परवरिश का सिलसिला उस समय से ही शुरू हो जाना चाहिए कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है। यद्यपि परवरिश से उनका अभिप्राय क्या है, ये एक बिल्कुल अलग विषय है।
उनका मानना है कि माँ के गर्भ में 23 सप्ताह की आयु में शिशु सुनने लगता है और आवाजों पर प्रतिक्रियाएं देने लगता है, इसलिए शिशु को कहानियां सुनाई जा सकती हैं, संगीत सुनाया जा सकता है और उससे बात भी की जा सकती है, क्योंकि इस आयु में वो सीखने की सरल प्रक्रिया का अनुभव कर सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे को जन्म के बाद ही कुछ सिखाया जा सकता है। यद्यपि यदि माँ के गर्भ में शिशु को कुछ सिखाना संभव भी हो तो अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जो कुछ उसने सीखा है वो स्थायी है और लंबे समय तक के लिए लाभदायक है। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञ तो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि शिशु की परवरिश की ये प्रक्रिया उसके प्राकृतिक विकास को प्रभावित कर सकती है, यद्यपि इसे अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है।
ये ऐसी स्थिति में है कि जब कोरिया प्रायद्वीप में प्राचीन काल से ही गर्भवती महिलाएं गर्भ में शिशु की परवरिश और उसके शारीरिक एवं मानसिक जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को ट्राइग्यो कहा जाता है। कोरिया प्रायद्वीप में आज भी प्रचलित ये परंपरा 10वीं शताब्दी में चीन से आई थी। शिशु के पालन पोषण की इस पारंपरिक शैली का आधार वो दर्शन है कि जिसमें भ्रूण को गर्भाधान के समय ही एक पूर्ण मानव का दर्जा हासिल होता है। परवरिश की इस पारंपरिक शैली के मुताबिक गर्भवती महिलाएं अपने शिशुओं की प्रतिभा, व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास में सहायता करती हैं।
According to Korean culture, the fetus is a human being in its own right, and the fetal environment has a huge influence on the baby's development. A well-known South Korean motto says 9 months of prenatal education are more valuable than 9 years of postnatal learning.
When the children who receive Tae-o talk to their mothers later, they easily make eye contact and have no major communication issues. They also have good speech skills.
Tae-o arrived from China in the 10th century, but since the 1980s, this ancient tradition has been practiced more in hospital classes than at home.
कोरिया प्रायद्वीप में प्रचलित पालन पोषण की इस पारंपरिक शैली में गर्भवती महिलाएं संगीत सुनती हैं, कहानियां पढ़ती हैं, शिशु से बात करती हैं और योग अभ्यास करती हैं। उनका मानना है कि 9 महीने गर्भावस्था में शिशु की परवरिश जन्म के बाद 9 वर्षों की परवरिश से अधिक प्रभावी एवं लाभदायक है। गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों के लिए वातावरण को अच्छा और अनुकूल बनाए रखने की आशा में अपने व्यवहार, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करती हैं। शांतिपूर्ण और खुशहाल मन बनाए रखने के लिए वे इबादत करती हैं और बेहतरीन गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ ही खाने में लेती हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया भर की दूसरी संस्कृतियों एवं धर्मों में भी बच्चों के पालन पोषण की इसी से मिलती जुलती परंपराएं हैं। जैसे कि फ्रांस में हेप्टोनॉमी पालन पोषण शैली का नाम लिया जा सकता है। ये शैली डच वैज्ञानिक फ्रांस वेल्डमैन के दर्शन पर आधारित है।
ध्यान योग्य बिंदु यह है कि गर्भ में शिशु की परवरिश से संबंधित दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों में जो शैलियां प्रचलित हैं उनमें और इस्लाम के दृष्टिकोण के बीच जहाँ काफी समानताएं पाई जाती हैं, वहीं कई भिन्नताएं भी हैं। बच्चों की परवरिश के संबंध में इस्लाम के दृष्टिकोण को बयान करते हुए ईरान के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जामियतुल मुस्तफ़ा से अपनी शिक्षा पूरी करने वाले सैयद हादी मुसवी की, जो वर्तमान में भारत प्रशासित जम्मू व कश्मीर में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, کہتے ہیں کہ
جب ہم جو ہے ہمارے روایات اور احادیث کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچے کی پرورش جو ہے وہ تقریباً 4 ہفتے کے بعد سے, جب یہ اس کا حمل جو ہے وہ ہو جائے, جب جنین بن جائے, تو اس کے اس وقت سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں. یہ اب علمی طور پہ بھی ثابت ہوا ہے, اور جو ہماری روایت میں سے بطور نمونہ میں ایک روایت کا ترجمہ یہاں پہ آپ کے جو ہے عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شکاوت مند یا جو بدبخت ہوتا ہے وہ دراصل ماں کے پیٹ میں سے ہی اس کا وہ جو ہے خاکہ بن جاتا ہے بدبختی کا, اور اگر کوئی سعادت مند ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں سے ہی سعادت مند اور نیک بندہ جو ہے وہ نکلتا ہے. دراصل کہنا یہ ہے کہ جو ایک تربیت کے حوالے سے جو ایک نظام فکری بن جاتا ہے اس بچے کا, وہ ماں کے پیٹ میں سے ہی شروع ہوتا ہے بننا. دوسری ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام کے, مولا فرماتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کا بننا, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو فیوٹس جو ہے وہ اس میں روح جو آتی ہے تو ایک شکل اختیار کرتا ہے, تو اس ٹائم جو ہے اس وقت جو ہے خداوند متعال جو ہے 2 فرشتوں کو امر کرتا ہے کہ آپ اب اس کی جو ہے تقدیر جو ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ آپ لکھ لیں. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کیا لکھیں, تو کہتے ہیں کہ جو اس کی ماں کے پیشانی پہ یعنی فور ہیڈ پہ ماتھے پہ جو آپ اس کو دیکھیں جو آپ کو نظر آئے وہ لکھیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ یہ پیشانی کا ذکر آیا ہے, جو عبارت کے لحاظ سے لوح کا جو یہاں پہ وہ جو ٹرم یوز کی گئی ہے, دراصل یہ جو ہے اس کا جو فکری نظام ہے جس کا طرز تفکر ہے, جیسے ماں کا وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سوچنے کا جو ڈھنگ ہے, اس کے فکر کا نظام جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ فرشتے اب ماں کے ماتھے کو دیکھیں, فور ہیڈ کو دیکھیں اور اس کو اٹھا کے قلم جو ہے وہ لکھ لیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے دماغ کا جو تھنکنگ, جو اس کی تھاٹ ہے, کس تھاٹ پہ وہ پلی ہے, کس تھاٹ پہ وہ سوچ رہی ہے, اس کی کیا فکر ہے کہ بچے کی پرورش کیسی ہونی چاہیے, اس کے نظریے میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز خراب ہے, طبیعتاً یہ ایسے ہی اپنے بچے کی پرورش بھی کرے گی. تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ماں کی فکر دیکھیں, جب اس کی فکر آپ کو پتا چلے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ جو ماں ہے یہ کیسی تربیت کرے گی, اس کی عمر بھی کتنی ہوگی, یہ اسے شکاوت مند بنائے گی, اسے سعادت مند بنائے گی, یہ بچہ پھر بڑا ہو کے اچھا آدمی بنے گا, یہ بڑا ہو کے برا آدمی بنے گا. تو یہ اس کا جو ہے مفہوم ہے اس کی اس حدیث میں جو لوح کی جو عبارت آئی ہے.
شروتاؤں, منشی کی شکشا دیکشا بچوں کی پرورش کے سمبندھ میں اسلام ایک ویاپک ایوم وسترت درشٹی کون پیش کرتا ہے. ہم اس چرچا کو آگے بھی جاری رکھیں گے. اگلے سپتاہ بھی ہمارا یہ کاریکرم سننا نہ بھولیے گا.